السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کل جو بھی نیکیاں آپ کر رہے ہیں تو خوش ہو جائیے ان پہ، کہ ان کے ثمرات آخرت میں اجر و ثواب کے پہاڑوں کے برابر تو ملیں گے، اس کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی برکات دکھاتا ہے. نیکی اور گناہ میں یہی تو فرق ہے کہ نیکی کرنے میں مشقت تو ہوتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مگر اس کے بعد وہ خوشی ملتی ہے، وہ برکت زندگی میں ملتی ہے جو گناہ کرنے پہ نہیں. اس کی چھوٹی سی ایک مثال ایسے دیکھ لیں کہ مثلا آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اپنے لیے، گناہ کی بات نہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے خوشی سے خریدی مگر کچھ دیر بعد وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے. لیکن آپ کسی لاچار کی، کسی بے بس کی، کسی یتیم کی مدد کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو فیلنگ اندر ہوتی ہے، جو سکون اندر اترتا ہے، جو خوشی ملتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے جو آپ اپنے لیے چیز لیتے ہیں. تو گناہ کی قباحت تو اور بھی زیادہ نحوست لے کر آتی ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے، اپنی ضرورت کی چیز کوئی خریدنا، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن سٹل جب آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کے جو ثمرات ہیں آپ کو یہاں دنیا میں بھی دکھائی دینے لگتے ہیں. اسی طرح جو آپ تسبیح کرتے ہیں، جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، جو آپ تہجد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وقتی طور پر آپ کو مشکل ہوتی ہوگی اٹھنے میں، آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں یا تسبیح کرنے میں، مگر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسی دل کو راحت ملتی ہے. تو تھوڑی دیر کی مشقت ہے مگر اینڈ لیس خوشی ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت تک میں. اور گناہ میں تھوڑی دیر کی لذت ہے، جس وقت آپ اس کو کر رہے ہوتے ہیں اتنی دیر کا، مثلا کوئی زبان کا چٹخارا ہے، کوئی آنکھوں کے مزے ہیں، یا کوئی کانوں کا مزہ ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے، جس وقت تک آپ وہ چیز سن رہے ہیں یا وہ دیکھ رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد دل میں وحشت، بے چینی، ڈپریشن اور اس کی نحوست کے جو اثرات ہیں وہ زندگی میں پھیل جاتے ہیں. گناہوں کی نحوست ہوتی ہے نا، ہم لوگوں کو سوچتے ہیں کہ فلاں منحوس، فلاں جگہ منحوس، یا فلاں کا چہرہ دیکھ لیا تو نحوست، یا فلاں آ گیا تھا تو اس کی نحوست ہے. نہیں، لوگوں کی نحوست نہیں ہوتی، اصل میں انسان کے اپنے جو گناہ ہیں وہ نحوست لے کر آتے ہیں. کبھی ان کے بارے میں بھی سوچا کہ ان کی نحوست کی وجہ سے میری زندگی کے کام خراب ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ آپ جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے آپ بہت لائٹ فیل کر رہے ہیں، جیسے کوئی کندھوں سے بوجھ اتر گیا. تو انسان کو چاہیے کہ شوق کے ساتھ بڑھ چڑھ کے نیکی کرے، چاہے اس کو تھوڑی مشکل اٹھانی پڑے، مگر نیکیاں کرتے چلی جائیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی کیسے برکتوں سے بھر جاتی ہے. جب آپ کے ارد گرد کے لوگ بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں تو آپ کا دل مطمئن ہوگا. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ ابھی تک تو میں نے جو نیکی کیا تو ایسا کچھ نہیں ہوا. تو دیکھیں، اپنی ڈوز بڑھا دیں. پھر آپ کے سر میں درد ہو کبھی تو آپ یہ نہیں کہتے پچھلی دفعہ ایک گولی کھائی تھی اثر نہیں ہوا تو اب تو کھانی ہی نہیں ہے، بلکہ آپ اس کی ڈوز ڈبل کر دیتے ہیں، ٹرپل کر دیتے ہیں، دو تین گولیاں کھاتے ہیں. اس طرح اگر ابھی تک चैन और सुकून हासिल नहीं हुआ? नेकी करने के बावजूद तो नेकियों को बढ़ा दीजिए, ज्यादा कर दें, मगर याद रखिएगा बेलॉस होके करिएगा। वो जो अदले की बदले वाली नेकी होती है ना, उसका ना तो दुनिया में कोई फायदा है और ना आखरत में, सिवाय दुनिया में इतना सा शायद फायदा मिल जाए कि आपको उसी का बदला मिल जाएगा, मगर रजाए इलाही नहीं मिलेगी, सुकून और चैन नहीं मिलेगा, बल्कि बेचैनियां आएंगी। यही इंतजार रहेगा अब इसकी तरफ से बदला कब मिलेगा। तो ये नहीं करना कि आज किसी के काम आऊं इसलिए ताकि कल को ये भी मेरे काम आए, आज इसके घर खाना भिजवाऊं ताकि कल को ये भी मुझे भिजवाए, आज सदका खैरात करूं ताकि ये कल को मेरे से मेरे काम बेहतर तौर पे करे। तो ये तो खोट आ गया ना। आज आप किसी के साथ इसलिए कर रहे हैं कि कल आपको इसी से बदला चाहिए, और फिर जब बदला नहीं मिलता तो इंसान बेचैन हो जाता है, इंसान को गुस्सा आने लगता है। तो ऐसी नेकी करने से बेचैनी ही आएगी, वो नेकी जो बेलॉस, कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। फिर उसके बारे में देखिएगा कि जब आप सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ नजर लगा लेते हैं कि अल्लाह मुझे तुझसे चाहिए, मुझे किसी और से भी नहीं चाहिए, फिर आप देखिएगा यहां पे भी इसके असरात और आखरत में तो जो फल मिलेगा वो मिलेगा ही। ये होती है खालिस नेकी, ये होती है खुलूस से की भी नेकी, और इसकी बेशुमार मिसालें आपको मिलेंगी तारीख में। और आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत का नाम रखना चाहती हूँ जो एक बहुत बड़ी हदीस की किताब के मुसन्निफ हैं, मुसनद बज्जार। ये अगर आपने नाम सुना हो, 20 जिल्दों पे मुश्तमिल है ये उनकी हदीस की किताब। तो इसके लिखने वाले इमाम अबू बकर अल बज्जार, 3री सदी हिजरी के इमाम थे। इनका वाकया आता है कि ये मक्का गए हुए थे ताकि वहां पे हदीस सीखें, हदीस लें रावियों से। कहते हैं एक दिन मैं बहुत सख्त भूख में था, खाने को कुछ भी नहीं था, बहुत तलाश किया कुछ भी नहीं मिला, हाँ मगर एक रेशमी पोटली मिल गई जो मैंने जब उठाई और खोली तो देखा उसके अंदर एक बड़ा ही कीमती खूबसूरत मोतियों का हार था। इतना खूबसूरत हार कहते मैंने कभी नहीं देखा, तो मैंने उसको जेब में डाल दिया और खाने की तलाश करने लगा। इस दौरान मैंने सुना एक बूढ़ा आदमी पुकार रहा था, ए लोगो मेरा हार गुम हो गया, जो वो मुझे हार ला के देगा उसको 500 दीनार दूंगा। दीनार सोने का सिक्का होता था। तो बाजार कहने लगे, मैंने सोचा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, मैं भूख से मर रहा हूं, चलो कुछ खाने को ही मिल जाए, 500 दीनार। उस वक्त तालिबी इल्मी के दौर में लोग इसी तरह भूख और प्यास काटते थे, मुख्तलिफ जगहों पे सफर करके जाते थे हदीस की तलाश में। देखें कैसे सुभान अल्लाह कि हदीस का शौक कितना था कि मक्का आए में हदीस सीखने के लिए और पेट में कुछ नहीं। तो कहते हैं मैंने उससे कहा कि मेरे साथ चलो, और उसको पूछा कि निशानियां बताओ हार की, और जब उसने बताई तो वो वाकई उसी का हार था। अब कहते हैं मैंने जब उसको हार दिया और उसने 500 दीनार निकाले मुझे देने के लिए, तो मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने उसे कहा मुझे इसका सिला तुमसे नहीं चाहिए, अल्लाह से चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं, ये तो अब मैंने वादा किया था आपको, ये तो लेने होंगे क्योंकि मैं आपने मुझे वो चीज लौटा दी है। कहते मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे आप मुझे इनाम दें, इसलिए कि ये तो मेरी जिम्मेदारी थी आपकी चीज आपको लौटा देना, और मैं इसका अजर सिर्फ अल्लाह से चाहता हूं। अब अंदाजा करें वो किस हालत में ये कह रहे हैं, जब भूख से खुद बेचैन है और कोई चीज अभी तक खाने को भी नहीं मिली, उस वक्त किसी के सामने ऐसी चीज आ जाए तो वो कौन इनकार करेगा। लेकिन कहते हैं कि बस मैं डट गया, मैंने कहा नहीं, वो इसरार किए जा रहे थे, लेकिन मैं कह रहा था कि नहीं, मैं बस इसका अजर अल्लाह से ही लेना। चलो वो आदमी हज करने आया हुआ था वापस चला गया। अबू बकर बाजार कुछ अरसा तक मक्का में रहे, हदीस सीखते रहे, फिर वहां से रवाना हो गए। जद्दा से एक बहरी जहाज में बैठे, रास्ते में एक तूफान आया, सारा जहाज तबाह हो गया, और ये एक लकड़ी के तख्ते पे सहारा लिए हुए पता नहीं महीना या इससे भी कहते हैं ज्यादा या कम, कहते हैं मैं समंदर में इसी तरह चलता रहा, बस ये कुछ समंदर से चीजें लेके खा लेता था। हत्ता कि एक दिन वो तख्ता एक जजीरे पे आ लगा, और मैंने ये पहला काम किया कि वहां की जो मस्जिद थी वहां गया, नमाज पढ़ी। और जब नमाज में कुरान पढ़ा तो लोगों ने कुरान सुना, वो जमा हो गए, कहने लगे हमारा तो सारा गांव अनपढ़ है और आप कुरान पढ़ना जानते, हमें भी कुरान सिखा दें। तो उन्होंने अपने लड़कों को बच्चों को बुलाया और कहा कि आज से आप इनके कुरान के उस्ताद हैं। इनको लिखते भी देखा, कहा उन्होंने कि हमें लिखना भी सिखाएं क्योंकि हमें लिखना भी नहीं आता। तो दिन के आखिर तक इनको जॉब मिल चुकी थी। उन्होंने कहा आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहें, हम यहीं आपकी शादी कर देंगे। तो इन्होंने बहुत इनकार किया, मगर उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास एक लड़की मौजूद है, एक यतीम लड़की, आप उसे शादी कर लें, यहीं अपना घर बसा लें। उन्होंने शादी का इंतजाम किया, और ये जब उसको ब्याहने के लिए गए तो लड़की को देखा तो हैरान हो गए कि उस लड़की ने वो ही हार पहना हुआ था जो इनको मिला था मक्का में। इनकी आंखें तो खुली की खुली रह गई कि ये क्या। लड़की नाराज हो गई कि ये आदमी तो मेरे माल का लालची लगता है, मुझे देखने बजाय इसने तो हार पे नजरें रखी। लोगों ने कहा ये आपने क्या किया। कहने लगे दरअसल इस हार के पीछे किस्सा है, और उनको सारा वाकया बताया। ये सुन के जितने लोग वहां थे उन्होंने नारा तकबीर बुलंद किया, सुबहान अल्लाह कहने लगे, अल्लाह अकबर कहने लगे। तो इन्होंने कहा ही कि ये क्यों आप कह रहे हैं, क्या हुआ। लोग कहने लगे इस लड़की का बाप हज पे गया हुआ था, जब वो वापस आया तो एक दुआ मांगा करता था, या अल्लाह मैंने ऐसा मुसलमान कभी नहीं देखा, मुझे उससे दोबारा मिला दे ताकि मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूं। वो एक साल तक ये दुआ करता रहा, हत्ता कि वो फौत हो गया। सुभान अल्लाह, फिर इनकी शादी उस लड़की से हो गई। लड़की बड़ी खूबसूरत थी और नेक सीरत भी थी, उससे इनके दो बेटे पैदा हुए। फिर वो फौत हो गई और वो दो बेटे भी फौत हो गए, तो इनको विरासत में वो ही हार मिला। इन्होंने फिर 1 लाख दीनार में उसको बेचा, और इसके बाद फिर इनको काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने अपनी फिर ये मुसनद बाजार मुकम्मल की, जो मैंने आपको बताया कि हदीस की किताब। तो ये एक सच्चा वाकया तारीख में मिलता है। लिहाजा जो नेकी आप सिर्फ अल्लाह की खातिर करते हैं कि अल्लाह मुझे तेरे से बस अजर चाहिए, तो आप देखेंगे कि आपके दिल जिस्म और पूरी जिंदगी में उसके असरात झलकने लगेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी नीयत कितनी खालिस थी, उसमें कोई खोट तो नहीं था। और आजकल तो नेकियों के दरवाजे खुले हुए हैं, अपनी नेकियों में वैरायटी लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत में तेज आंधी की तरह हो जाते थे, यानी आंधी हर चीज को छू जाती है। इस तरह आप राइट लेफ्ट आगे पीछे नेकी करें, घर वालों के साथ करें, रिश्तेदारों के साथ करें, हमसायों के साथ करें, घर वालों को मुस्कुरा के पेश आए, बार बार सलाम कीजिए, किसी को हेल्प चाहिए तो वो दे, हमसाए दोस्त अहबाब है, किसी को कोई काम है तो उसको काम पूरा कर दीजिए। अगर आपके वालदैन आपके करीब रहते हैं तो उनकी खिदमत करें। आपको पता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा ख्वाब में जन्नत देखी, जो फरमाते हैं कि मैंने वहां पे आवाज सुनी कुरान पढ़ने की, मैंने कहा कौन है जो ये कुरान पढ़ रहा है, तो मुझे कहा गया ये हारिसा बिन नुमान है। आप ने फरमाया कि माँ बाप से नेकी करने का सवाब इस तरह है, क्योंकि हारिसा बिन नौमान अपनी वालदा के साथ बहुत नेकी किया करते थे, और वो तो हदीस आपको पता ही है कि अल्लाह की रजा बाप की रजा में है और अल्लाह ताला की नाराजगी बाप की नाराजगी में। यानी अगर बाप औलाद से खुश है तो अल्लाह ताला भी खुश है, अगर बाप औलाद से नाराज है तो अल्लाह ताला भी नाराज है। अल्लाह हू अकबर। यही वालदा का भी कहते हैं दर्जा है। और अगर वालदेन जिंदा नहीं है तो उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ नेकी करें, उनके दोस्त उनके रिश्तेदार। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया था तो उसने कहा था कि मुझसे गुनाह हो गया। आपने फरमाया अगर तुम्हारी वालदा जिंदा उसके साथ जाके नेक सलूक करो। उसने कहा वो तो जिंदा नहीं। फरमाया फिर खाला जो है वो जिंदा है? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया जाओ उससे नेक सलूक करो। तो माँ बाप के साथ नेक सलूक करना गुनाहों का कफारा बन जाता है। कोई इंसान गुनाह हो गया हो ना तो माँ बाप के साथ नेक सलूक कर लें। आपको पता है सबसे बड़ी नेकी की मुस्तहिक तो वालदा है। आप दुनिया जहान में नेकियां करते फिर रहे हैं लेकिन आपने वालदा के साथ नेकी नहीं की, तो कुछ नहीं किया। हम इसमें भी अदले से बदला करते हैं ना कि बड़ा करके देख लिया ये तो हमें को पूछते ही नहीं। हालांकि कुरान कहता है उनके साथ एहसान करो। एहसान अदले का बदला नहीं होता। एहसान क्या होता है कि जो किसी ने किया उसे बढ़ के करना। और हमारी शिकायतें वालदैन से खत्म ही नहीं होती, इन्होंने हमारे साथ ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। याद रखिएगा तीन लोग जो ऐसे हैं कि वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, ये हदीस है। एहसान जिताने वाला, यानी नेकी कर लिया तो उसके बाद उसके ऊपर वो एहसान जिताए हमने तुम्हारे साथ ऐसे किया हमने ये किया हमने तुम्हारे साथ उस फलाने वक्त में ऐसे किया। दूसरा वालदैन का नाफरमान और तीसरा शराब पीने वाला। ये तीन लोग नहीं जाएंगे जन्नत। अल्लाह हू अकबर। तो अपने वालदेन के साथ भलाई करिए, वो दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए दुआएं करिए, और वरना उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करिए। इस तरह कोई भी जरूरतमंद हो उसको खाली ना जाने दें। आपको पता है कि इंसान की जो सबसे बेहतरीन जो इंसान है जो सबसे बेहतरीन बंदा है वो कौन सा है? अल्लाह ताला के नजदीक जो महबूब तरीन है वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो है जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए नफामंद यानी फायदा पहुंचाने वाला, राइट एंड लेफ्ट जिससे मिलते हैं उसको कोई ना कोई फायदा देने की आपको फिक्र हो जाए कि मैं इसको कैसे कोई खैर पहुंचा दूं। बाज लोगों में शर इतना ज्यादा होता है वो कहते हैं किस तरह इसको कोई शर ही पहुंचे, कैसे इसकी जड़ें काटूं, कैसे लगाई बुझाई करूं, कैसे इसकी बातें लोगों को बताऊं। और कुछ लोग होते हैं जो खैर पहुंचाने वाले, इधर भी खैर उधर भी खैर, जिधर जाते हैं वो खैर की कुंजियां होते हैं, वो जहां जाते हैं खैर फैलाते हैं। तो ये अल्लाह ताला के बड़े महबूब लोग, अगर अल्लाह ताला के महबूब लोगों में शामिल होना लोगों के लिए नफामंद बन जाए। गैर को छुपाएं नहीं, होल्ड नहीं करें, उसके ऊपर साम बन के नहीं बैठ जाएं कि किसी और को ना कोई खैर मिल जाए, बल्कि इसको फैलाएं। और अल्लाह ताला के नजदीक जो पसंदीदा तरीन आमाल है ना उनमें एक ये है कि इंसान अपने भाइयों में खुशियां बांटे, यानी अपने मुसलमान भाई के को कोई खुशी दे दे या उससे किसी तकलीफ को दूर कर दे या उसकी भूख मिटाने का सामान कर दे। तो ये फेवरेट है अल्लाह ताला के नजदीक के काम, पसंदीदा तरीन। आज कितनी भूख है आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आप तक भी वो खबरें पहुंचती होंगी कहाँ कहाँ भूख से लोग किस हालात में हैं जिनको एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं। इसी तरह आपके किर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, आप उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं कोई अच्छी बात कह के, कोई अच्छा मशवरा दे के, वो उनका दुख सुन के, या आप किसी की तकलीफ को दूर कर सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा अपने भाई के साथ चलना कि मैं उसका कोई काम कर दूं, ये मेरे नजदीक इस बात से भी ज्यादा महबूब है। देखें आप इस काम का दर्जा देखें कि मैं किसी के साथ जाऊं उसका कोई काम करने, किसी की कोई जरूरत। हम तो कहते हैं नो, हम ही रह गए हैं जो किसी का काम करे, जाए किसी और से जाके करा ले, किसी और को कह दे, मैं क्या करूं, अब मेरे पास कोई फालतू टाइम है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं किसी के साथ जाऊं और उसको कोई काम करा दूं, ये मेरे नजदीक इससे ज्यादा महबूब है कि मैं मस्जिद नबवी में, हमारा कितना शौक हो कि हम मस्जिद नबवी में हमें इतकाफ मिल जाए, तो फरमाया मस्जिद नबी में 1 महीने तक इतकाफ बैठूं, इससे ज्यादा मुझे ये बात पसंद है कि मैं जाके किसी का काम करा दूं, किसी की जरूरत है, किसी का कोई काम है फंसा हुआ, उसके साथ चले गए, उसका काम हो गया। ये सुभान अल्लाह इतनी बड़ी नेकी है। अब हमें शौक होता है कि हम इतकाफ बैठे, हम नहीं बैठ सकते तो इसके ऊपर रंज हो रहा है, लेकिन हमारा दीन ऐसा है कि सबको अकोमोडेट करता है। आपकी मजबूरियां, आप नहीं बैठ सकते, लेकिन आप ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं जो अल्लाह ताला के नजदीक इससे भी ज्यादा पसंदीदा है। तो हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया कि जो अपने किसी मुसलमान भाई का कोई काम करने के लिए उसके साथ चला गया, हत्ता कि उसको वो काम कर दिया, अल्लाह ताला उस दिन उसको साबित कदम रखेगा जिस दिन कदम डगमगा जाएंगे, उस दिन यानी कयामत के दिन। अल्लाह अकबर। इसी तरह फरमाया जिसने किसी मोमिन से दुनिया की कोई मुसीबत दूर कर दी तो अल्लाह ताला कयामत की मुसीबतों में से एक मुसीबत उससे कम कर दे, कि जिसने किसी तंग हाल के साथ आसानी का रवैया अख्तियार किया, अल्लाह ताला दुनिया और आखरत में उसके लिए आसानियां कर देगा। जिसने किसी मुसलमान भाई की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला दुनिया और आखरत में उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। अब देखिए ना क्या कहा गया, दुनिया और आखरत, दुनिया और आखरत। तो आपकी ये नेकियां सिर्फ आखरत की नहीं, दुनिया में भी आपको फायदा देंगी। फिर फरमाया अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद फरमाता रहता है जब तक बंदा अपने किसी मुसलमान भाई की मदद करता रहता है। जितनी देर आप किसी की हेल्प करेंगे अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। और अल्लाह की मदद कितनी बड़ी बात है, हम तो क्या किसी की मदद करेंगे। तो उसको फालतू ना समझा करें, उसको टाइम वेस्ट ना समझे, उसके ऊपर नाक मुंह ना चढ़ाएं। कभी कभी नेकी करके भी उसके बाद हम उसको जाया कर देते हैं, जब हम उसके बाद बातें बनाते रहते हैं कि मुझे कह दिया, मुझे कॉल कर दी इस काम के लिए, मुझे फालतू समझा हुआ, कर भी देते हैं और उसके बाद बातें भी बनाते हैं, तो हम अपनी कई नेकियां ऐसे करके गंवा देते हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है, किसी का कोई काम आपके जिम्मे लग जाए, कोई आपको हेल्प के लिए अगर पुकारे तो याद रखिएगा अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि आप इतनी बड़ी नेकी कमा लें कि अपनी दुनिया की भी और आखरत की भी आसानी पैदा कर लें। आखरत में जहां पे बड़ी मुसीबत का वक्त होगा वहां की मुसीबत कम कर सकते, दुनिया और आखरत की पर्दापोशी पा सकते, अल्लाह की मदद हासिल हो जाएगी आपको। ये बहुत बड़ी बातें हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो किसी के लिए भलाई में सिफारिश ही कर दें, आपको उतना अजर मिल जाएगा जितना भलाई करने वाले को। यानी किसी का कोई काम है फंसा हुआ, आपके एक फोन करने से उसका काम हो जाता है तो आप कर दें। हम इसमें भी डोंट केयर एटीट्यूड रखते हैं, आई डोंट केयर, खुद ही करता फिरे, हालांकि हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन बस हमें परवाह नहीं होती। अब आपको कोई बताता है मसलन के फलां जगह पे जरूरत है, फलां जगह अपना हिस्सा डाल लें, फलां कोई कॉज है, फलां कोई एक जगह है, या आप इफ्तार पे गए या मस्जिद में गए तो बीच में इंटरवल में आपको मौका मिलता है तो वहां आप कोई नेकी की सिफारिश कर सकते हैं, तो नेकी की बात कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे आप मस्जिद में, आपको उसमें इंटरवल में टाइम मिला, आप अपने साथ वाली से सवाल करें कि क्या आपको समझ आ रहा है जो इमाम साहब पढ़ रहे हैं, और वो कहती है नहीं या थोड़ा बहुत कुछ समझ आ रहा है, तो आपके लिए दावा का दरवाजा खुल गया, नेकी को मल्टीप्लाई करने का मौका मिल गया। फौरन उसको बताइए किस तरह से आप कुरान सीख सकती हैं, किस तरह से आपके लिए अल्लाह ताला ने मौका दिया है, तो आप देखें कि कितने मौके हमारे लिए हैं। अब आपने ये भलाई का काम किया, इसका इतना अजर है कि वो जितना भलाई करती रहेगी आगे, वो अगर कुरान सीख लेती है, उसके घर में चेंज आता है, उसकी जिंदगी में आता है, सारी नेकियों का अजर आपको मिल रहा है। और क्या चाहिए? तो इस तरह से आप अपने लिए सदका जारिया के अकाउंट खोल सकते हैं। तो नेकी के मौके तो बहुत से हैं। दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें नेकियां नजर भी आने लगे, नेकियां दिखाई देने लगे। मौके तो पड़े हुए हैं, मगर बाज दफा हमें नजर ही नहीं आते। तो नजर बाज दफा उस वक्त आते हैं जब कोई दूसरा कर लेता है। लिहाजा नेकी के हर मौके को, जो भी आपके सामने आए, एक तो उसी वक्त करने की कोशिश करें ताकि आप उस चांस को खो ना दें। तो सोचते नहीं रह जाना, कर डालना। दूसरा ये, अल्लाह ताला से नेकी के मौके मांगिए और तौफीक मांगिए कि अल्लाह मुझसे नेकियां करा ले। लेकिन जितनी जिस चीज की तलब होगी, तड़प होगी, उस तरह ही मिलेगी ना। आज की जो दुआ है वो हम सब की जरूरत है। लेकिन पहली तो हमने जो बात की वालदैन के साथ एहसान करने की, तो उनके लिए भी दुआ करनी है। और इसी तरह हमारे और सबसे करीबी रिश्ते कौन से होते हैं? आदमी के लिए बीवी का, और इस तरह औरत के लिए शौहर का, इसी तरह औलाद का रिश्ता। तो ये दुआएं सबके लिए, वालदेन के लिए, चाहे वो जिंदा हैं या दुनिया से चले गए। आप सलाम फेरने से पहले ये मामूल बना लें कि मैंने ये दो दुआएं करनी है। एक, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब उन पे रहम फरमाना जैसे उन्होंने, मैं जब छोटी थी उस वक्त उन्होंने मुझ पे रहम किया। दूसरी दुआ, जो लोग परेशान रहते हैं अपने स्पाउस से की वजह से आपस में नहीं बनती, या कोई ऐसी आपस के अंदर कोई परेशानी की बात है अपने जौज से या औलाद की तरफ से परेशान रहते हैं, तो ये इतनी प्यारी और इतनी जामे दुआ है। रब्बना हबलना मिन अज़वाजीना वज़ुर्रियातीना कुर्रता आयुनिन, अल्लाह मेरे अजवाज को, यानी आदमी है तो बीवी और औरत है तो शौहर, कि मेरे शौहर को और मेरी औलाद को आंखों की ठंडक बना दे। अब इसमें ये नहीं कहा गया कि उनको जॉब दे दे, या बच्चे हैं तो उनके रिश्ते अच्छे आ जाएं, या फिर वो उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, या फिर उनका दीन में वो कामिल हो जाएं, या फिर उनसे दीन की खिदमत ले ले, या उनको दीन पे चला दे, या कुछ भी नहीं है। कुर्रता आयुन, यानी मेरी आंखों की ठंडक बना दे, यानी ऐसी सारी चीजें जिससे मेरा सीना ठंडा रहे, मेरी आंखें ठंडी रहे उनको देख के, वो सारे काम कर दे। इसमें सब कुछ ही आ गया। जाहिर है जब औलाद फले फूलेगी, दीन में भी आगे होगी, नेक भी होगी, सिराते मुस्तकीम पे भी चलेगी, और उनकी तालीम भी अच्छी हो जाएगी, दुनिया भी अच्छी हो जाए, दीन भी अच्छा हो जाए, आखिरत के लिए भी अपने काम कर रहे हैं, तो आंखें ठंडी होंगी वालदैन की। और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा, मसलन औलाद की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है, या औलाद बिगड़ गई है, या औलाद के कोई और मसाइल हैं, तो आंखें तो ठंडी नहीं होंगी। तो लिहाजा जो आंखों की ठंडक की बात है ना, ये इतनी जामे है, इसमें सारी जिंदगी की बातें आ गई। इसी तरह शौहर की तरफ से भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो घरों में, नाचाकी आपस के अंदर, या शौहर की कोई आदतें खराब हैं, या कुछ और सताते हैं किसी तरह, या कोई उनको प्रॉब्लम्स हैं आगे उनकी जॉब्स में, तो ऐ अल्लाह इनको भी मेरी आंखों की ठंडक बना दे। सुभान अल्लाह, नहीं हम अगर सोचें भी ना, तो हमें कितनी सारी दुआएं मांगनी पड़े ये सिर्फ एक बात के लिए कि हमारी आंखें ठंडी हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी बात हमें, ऐसी बात, ऐसी दुआ सिखा दी कुरान करीम में, कि जो सारी इन बातों को कवर कर लेती है, जो हम अपनी औलाद के लिए और अपने शोहरों के लिए चाहते हैं। इसी तरह औलाद की जिंदगी भी इसमें आ गई, उनकी और शोहर की भी, और इसी तरह उनकी सेहत भी आ गई इसके अंदर। जाहिर है उन किसी की भी इनमें से बीमारी देख के तो आंखें ठंडी नहीं होंगी। तो वो सेहतमंद भी रहें, फलें फूलें भी, जिंदगी की बहारें भी देखें, खुशहालियां भी उनको मिलें, उनका दीन भी अच्छा हो जाए, उनकी आखिरत भी अच्छा, सब कुछ आ गया इसमें कि इसी से हमारी आंखें ठंडी होनी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। और अल्लाह हम सबको ही, हमें, मुझे भी और शोहर को भी मेरे और मेरे बच्चों को भी, या अल्लाह मुत्तकीन का इमाम बना देना, नेक लोगों का भी इमाम, लीडर। तो बहुत ही प्यारी दुआ है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि इन दुआओं को याद कर लें। इसमें अपने वालदैन के लिए भी एक दुआ, और एक अपने सबसे करीबी रिश्ते, औलाद और शोहर के लिए दुआ आ गई। आज का जो जिक्र है इसके अंदर बहुत प्यारा जिक्र है। पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह के साथ किया था, अब सुबहान अल्लाह के साथ है ये वही जिक्र, सुबहान अल्लाह अदद मा खलक। और हम इतनी दफा सुबहान अल्लाह तो कह ही नहीं सकते कि जितनी अल्लाह ताला की मखलूक की गिनती के बराबर हो, लेकिन ये जब हम ये जिक्र कर लेते तो इतनी दफा हमारी सुबहान अल्लाह हो गई, सुबहान अल्लाह मिल अमा खलक। और इतनी दफा अल्लाह ताला की तारीफ कि जो इसकी मखलूकात को भर दे, सुबहान अल्लाह अदद मा फिल अर्दी वस्समा। अल्लाह ताला की इतनी पाकी मैं बयान करती हूँ, जितना तादाद है, गिनती है चीजों की जो आसमानों में और जमीन में, सुबहान अल्लाह अदद मा आसा किताब। मैं इतनी अल्लाह ताला की पाकी बयान करती हूँ चीजों के बराबर, जिन्हें उसकी किताब ने शुमार कर रखा है, सुबहान अल्लाह मिल अमा आसा किताब। और अल्लाह की इतनी तारीफ करती हूँ जो उसकी किताब ने, जो उसकी किताब में जो कुछ है उसकी भराव के बराबर, सुबहान अल्लाह अदद कुल्ली शई। मैं अल्लाह ताला की इतनी पाकी बयान करती हूँ अदद यानी गिनती के बराबर हर चीज के, सुबहान अल्लाह मिल अकुल्ली शई, और हर चीज के भराव के बराबर, सुबहान अल्लाह। बहुत प्यारी प्यारा ये जिक्र है, इसको जारी रखें अपनी जुबानों पे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए ये जिक्र करने की और ये दुआएं करने की। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.